लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि विश्व शांति की सेवा में संघर्ष की भाषा पर प्रेम और वार्तालाप की भाषा सदैव प्रबल रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामयिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के COP24 सम्मेलन पोलैंड के कैटोविस शहर में 2 से 14 दिसंबर तक चली। सम्मेलन में करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्राकृतिक पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस समझौता के कार्यान्वयन के लिए नियमों का अंतिम रूप देना था। एक नजर पेरिस समझौते पर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 फ्रांस के पेरिस में 2015 को आयोजित किया गया था। इतिहास में पहली बार दुनिया के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के तरीकों पर एक सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य पर पहुंचा। आयोजन समिति के अनुसार सम्मेलन में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित करना था। एक नजर ग्लोबल वार्मिंग पर। ग्रीन हाउस गैस धरती से लौटने वाली सूरज की गर्मी को सोखकर धरती के तापमान को संतुलित रखती है, लेकिन अगर धरती पर इन गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो धरती का तापमान भी बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, फ्रिज, एसी के प्रयोग से इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इस वजह से धरती पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसका सीधा प्रभाव धरती के तापमान पर पड़ा है। धरती के तापमान में हो रही इस बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पोलैंड में हुए COP24 सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक रिपोर्ट COP24 स्पेशल रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑन क्लाइमेट चेंज जारी किया। जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की वजह से विश्व भर में हर साल 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिससे विश्व को करीब $5.11 ट्रिलियन का नुकसान होता है। पेरिस समझौते को कारगर बनाने के लिए सभी देश गंभीरता से कदम उठाएं तो इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। आइए सुनते हैं पोलैंड में हुए सम्मेलन COP24 पर विस्तार से।
दुनिया भर में तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से पोलैंड में विशेष सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका नाम COP24 रखा गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस सम्मेलन को शुरू करते हुए विश्व नेताओं से एक भावनात्मक और नाटकीय अपील में कहा कि वे इस वैश्विक चेतावनी को गंभीर समझें और इस सदी के अंत से पहले ही तापमान वृद्धि को रोकने के लिए ठोस प्रयास करें। COP24 सम्मेलन के मौके पर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के बारे में अनेक रिपोर्टें तैयार की हैं। इन रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि तापमान वृद्धि को काबू में करने के लिए समुचित उपाय नहीं किए गए हैं। इसी संदर्भ में महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने तमाम प्रतिनिधियों के सामने ये स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए किए गए उपाय बहुत कम हैं।
We are in trouble. We are in deep trouble with climate change.
हम सभी मुश्किल में हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर हम सभी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। जलवायु परिवर्तन हमारी सोच के मुकाबले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सभी को समय रहते बहुत पहले ही सचेत होना होगा, नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुछ लोगों, क्षेत्रों और यहां तक कि पूरे के पूरे देशों के लिए तो ये जिंदगी और मौत का मुद्दा बन चुका है। और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता होने के बाद ये समारोह इस मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इससे ज्यादा और कड़े शब्दों में इस मामले की गंभीरता और अर्जेंसी यानी तत्कालिकता को बयान नहीं किया जा सकता। इस गंभीर और आपात स्थिति के बावजूद हम सभी समुचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महासचिव ने विश्व नेताओं से ऐसी ठोस योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की पुकार लगाई जिससे क्लाइमेट एक्शन में तेजी आए। COP24 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है COP24 स्पेशल रिपोर्ट ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साझीदार विशेषज्ञों और संगठनों द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की वजह से हर वर्ष करीब 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इन 70 लाख लोगों की मौत हो जाने से देशों की अर्थव्यवस्थाओं को करीब $5.11 trillion का नुकसान होता है। बेतहाशा गर्मी बढ़ जाने से लोगों की कामकाज करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है जिसका नकारात्मक असर खेती बाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है क्योंकि लोग अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर योगदान नहीं कर पाते हैं। जिन देशों में अब भी फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म वाला ईंधन इस्तेमाल होता है जिससे भारी धुआं निकलता है उससे उन देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के करीब 4% के बराबर नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि अगर पेरिस समझौते में बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने पर जो संसाधन खर्च होंगे उनका दायरा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग सिर्फ 1% होगा। संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रस एडहेमम गेब्रियसस ने इस मौके पर कहा कि ये सबूत सबके सामने है कि जलवायु परिवर्तन इंसानों के अच्छे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और ऐसे बुनियादी तत्वों को नष्ट या खराब कर रहा है जिनकी हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए जरूरत है। इनमें साफ सुथरी हवा, पीने का साफ और सुरक्षित पानी, पौष्टिक भोजन और रहने के लिए साफ सुथरा और सुरक्षित आशियाना शामिल है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए कार्रवाई करने में अब जरा भी देर नहीं की जा सकती।
विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समाज के विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का ध्यान रखा जाता है। इस दिन के लिए इस वर्ष का विषय है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और समावेश और समानता सुनिश्चित करना। यह स्थायी विकास 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में एक समावेशी न्यायसंगत और टिकाऊ विकास के लिए विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग और विकास के विषय पर एक व्यापक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण।
दुनिया भर में विकलांग लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने विकलांगता और विकास के विषय पर एक व्यापक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि अब भी बहुत से देशों और समाजों में विकलांग लोगों को व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें उनकी विकलांगता की वजह से अलग थलग रहना पड़ता है। इस अध्ययन रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की विकलांगता के साथ अपना जीवन जीते हैं। रिपोर्ट में विकलांग लोगों का जीवन बेहतर बनाने और उनकी रोजमर्रा की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए व्यापक बदलाव लाने पर बहुत जोर दिया गया है। इनमें यातायात के साधन, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव, सार्वजनिक स्थान और सुविधाएं विकलांगों की पहुंच के लिए आसान बनाना शामिल हो। इनके अलावा तमाम तरह के ढांचे और लोगों की मानसिकता में इस तरह से बदलाव लाने पर भी जोर दिया है जिससे विकलांग लोगों के जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव आए।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे जिन्हें प्रस्तुत कर रही थी विभूति शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आसमान ये जमीन ये जीवन भी तेरी कृपा है तेरी दया से धरती थमी कल करती चंचल नदियां पेड़ पत्ते फूल कलियां जल हो थल हो ऊंचा गगन हो पंछी पवन या बहता दरिया हो तेरी सत्ता के सब है खिलौने तेरी सत्ता के सब है खिलौने तेरी कोई ठाह नहीं तेरे ही अंश है सभी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को वैटिकन में आयोजित क्रिसमस संगीत समारोह के कलाकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, क्रिसमस नित्य नया त्योहार होता है, इसलिए कि यह हमें विश्वास में पुनः जन्म लेकर आशा के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें उदारता के लिए आमंत्रित करता है। इस वर्ष यह हमें विशेष रूप से हमारे युग के अनेकानेक स्त्री पुरुषों और बच्चों पर दृष्टि लगाने के लिए आमंत्रित करता है जो कठिनाइयों में पड़े हैं। संत पापा ने कहा, विशेष रूप से युद्ध, सामाजिक न्याय के अभाव और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण अपने देश का पलायन करने वाले आप्रवासियों और शरणार्थियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो अपना सर्वस्व छोड़कर अनजान देश में शरण मांगने के लिए बाध्य होते हैं। संत पापा ने कहा, येसु हमारे बीच निवास करने आए, हमारी सीमितताओं और पापों के बीच उन्होंने निवास किया ताकि हमें ईश्वर के प्रेम से परिचित करा सके। ईश पुत्र होते हुए भी वे मानव बने और अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया। संत पापा ने कहा कि जब हेरोद का क्रोध बेतलहम पर पड़ा तब नाजरेत के पवित्र परिवार को भी अत्याचार और उत्पीड़न के दुखद अनुभव से पार होना पड़ा जिसने ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाकर मिस्र में शरण ली थी। शिशु येसु हमारा ध्यान विश्व में व्याप्त आज के अनगिनत शरणार्थियों की ओर आकर्षित कराते हैं क्योंकि ये सभी मानवीय अन्याय से पीड़ित निर्दोष बच्चे हैं। संत पापा ने कहा कि कलीसिया द्वारा आप प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए कई पहले आरंभ की गई हैं जो सराहनीय हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। विशेष रूप से उन बच्चों पर ध्यान देना अनिवार्य है जो आप प्रवासी और शरणार्थी जीवन के लिए बाध्य होने के कारण स्कूलों में जाने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी लंबी पैदल या जल यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। इन बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करना अनिवार्य है। संत पापा ने कहा, शिक्षा प्रदान करने का अर्थ है व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़े होने देना ताकि वे साहस और शक्ति सहित प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन कर सकें। शरणार्थियों के प्रति शिविरों के द्वारों को खोलने का आह्वान कर उन्होंने कहा कि शरणार्थियों और आप्रवासियों को समाज में एकीकृत कर तथा उनके प्रति एकात्मता और उदारता दर्शा कर ही हम ख्रिस्तीय सही मायने में क्रिसमस मना पाएंगे। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों से आग्रह किया है कि वे बोलने से पहले अन्यों की सुने ताकि विश्वास के मार्ग में आगे बढ़ सकें। 14 दिसंबर को एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, विश्वास की तीर्थ यात्रा में अनवरत विकास करने के लिए पहला कदम है सुनना, बोलने से पहले सुनना। स्पेन के मैड्रिड शहर में संयुक्त राष्ट्र संघीय कृषि और खाद्य संगठन के तत्वाधान में जल कृषि और खाद्य कल का निर्माण शीर्षक से गुरुवार को आयोजित एक दिन के सम्मेलन को प्रेषित संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने भोजन और जल के मूल्य को पहचानने का आह्वान किया। सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने लिखा कि सम्मेलन का विषय उन्हें नबी ईसाया के शब्दों का स्मरण दिलाता है, जो ईश वचन की तुलना वर्षा और धरती में व्याप्त जल से करते हैं। संत पापा कहते हैं, वर्षा, फसल और भोजन तीनों ही बाइबल धर्म ग्रंथ में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इनकी व्याख्या कभी भी लालच या अतृप्यता तथा शोषण के दृष्टिकोण से नहीं हुई, बल्कि धन्यवाद ज्ञापन से हुई है। संत पापा ने कहा कि विश्वासियों का विश्वास जिम्मेदारी में परिणित हो जाता है, ताकि मनुष्य उस दुर्भावनापूर्ण गिनती के जाल में न फंसे जो जरूरतमंदों की सहायता करने से हमें रोकता है। उन्होंने कहा, जिस कल की हम आशा करते हैं वह केवल निष्ठा, भ्रातृत्व और उदारतापूर्ण सहयोग से साकार हो सकता है। संत पापा कहते हैं कि आजकल मानवता को कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह सही निर्णय लिया जाएगा तथा एक न्याय संगत और समावेशी समाज बनाने के लिए ठोस नींव रखी जा सकेगी, जहां किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। संत पापा कहते हैं, पानी सर्वोपरि है, किंतु इसके बावजूद दुर्भाग्यवश हर किसी को यह उपलब्ध नहीं है। अस्तु यह नितांत आवश्यक है कि इसका बेहतर और तर्कसंगत तरीके से वितरण और प्रबंधन किया जाए। पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए संत पापा अपने संदेश में कहते हैं, यदि यह कार्य नहीं किया गया तो धरती मानव परिवार के जीवन का स्रोत बनना छोड़ देगी। यही कारण है कि धरती की सुरक्षा के लिए बच्चों और युवाओं को स्वस्थ कर भोजन ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त पोषण का अर्थ ही भोजन के मूल्य को समझना है। अंत में संत पापा आग्रह करते हैं कि हम भोजन की मेज को केवल अपशिष्टता और चंचलता की जगह न समझें, बल्कि इसे एक भ्रातृत्वपूर्ण मिलन स्थल माने। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को इटाली कैथोलिक टेलीविजन नेटवर्क तेलेपाचे की 40वीं वर्षगांठ पर केंद्र में कार्यरत लगभग 140 अधिकारियों, सहयोगियों और मीडिया कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश दिया तथा उनसे आग्रह किया कि वे उन लोगों की आवाज बने जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। संत पापा फ्रांसिस ने तेलेपाचे के अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को स्मरण दिलाया कि उनका प्रमुख लक्ष्य उन लोगों की आवाज बनना है जिनके पास आवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जब अपव्यय की संस्कृति अधिकाधिक लोगों की आवाज बंद कर रही है, आवाज विहीनों की आवाज बनने की नितांत आवश्यकता है। संचार की शक्ति को निकटता रूप में परिभाषित कर संत पापा ने कहा कि संचार के साधन ईश्वर द्वारा हमें मिले वरदान हैं, किंतु इसके साथ में गंभीर जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। इसलिए इन्हें ऐसे साधन बनाए जाएं जो अन्यों की परवाह करें, सांत्वना दें, चंगाई प्रदान करें और उनके साथ साथ चलकर उनके संग जीवन का समारोह मनाएं। संत पापा ने उक्त टेलीविजन नेटवर्क के अधिकारियों और मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वे प्रभु ईश्वर के करुणामय प्रेम का स्मरण कर अपने पड़ोसी, कैदी तथा प्राणदंड की प्रतीक्षा करते व्यक्तियों के साथ रहकर आध्यात्मिकता के एंटेना बने। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।